ओम शांति। हमारे बीच में डॉक्टर सविता दीदी जी हैं, हम सभी उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1965 में राजस्थान के कोटा प्रांत में आपका जन्म हुआ। कोटा में ही आपकी अर्ली स्कूलिंग हुई और उसके बाद 1989 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने अपनी MBBS की डिग्री प्राप्त की। शुरू में अनेक स्थानों पर अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की सेवाएं दी, उदयपुर, कोटा, इंदौर आदि में। और उसके बाद 1991 में आपने मधुबन में ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ज्वाइन किया। 2000 तक वहीं पर सेवाएं देने के बाद 2001 से आप ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय बड़े दादी के आप पर्सनल फिजिशियन रहने का आपको सौभाग्य मिला है। आपकी बचपन से ही आध्यात्मिकता में बहुत रुचि थी। 1975 में आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आई और 1990 में पूर्ण रूप से जन कल्याण के लिए आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। आप समय प्रति समय देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर अलग अलग विषयों पर, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफस्टाइल, मेडिटेशन एज मेडिसिन आदि विषयों पर आप लोगों को जागरूक करती रहती हैं। और 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ईयर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट डिक्लेयर किया था, उसमें आपने ऑल इंडिया वुमेन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट कैंपेन जो ब्रह्मा कुमारीज ने ऑर्गेनाइज किया था उसको लीड किया था। आप वुमेन विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और आज ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी विशेष डॉक्टर सविता दीदी के अनुभव हम सुनेंगे उन्हीं के मुख अरविंद द्वारा। डॉक्टर सविता दीदी जी,
ओम शांति। अभी 31 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए फॉलो फादर करना माना हमारे संकल्प, बोल और कर्म ब्रह्मा बाबा के समान हों। हम अव्यक्त दिवस या कहेंगे स्मृति दिवस के बहुत नजदीक हैं और बाबा के कहे हुए वचन, बाबा के किए हुए कर्म इन दिनों में हम सहज ही याद करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने जब 18 जनवरी को अपना अंतिम क्लास कराया, रात्रि क्लास कराया, उस समय बाबा ने ये शब्द उच्चारण किए थे, आप सभी को याद होगा, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। क्योंकि बाबा की स्वयं की वो स्थिति बन चुकी थी और बाबा की हम बच्चों के लिए प्रेरणा थी कि हमें भी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति संपूर्ण बनने के लिए बनानी है। तो निराकारी स्थिति आत्मिक स्थिति है, अशरीरी स्थिति है। हम पहले दिन जब ज्ञान में आते हैं, पहला पाठ पढ़ते हैं, तो आत्मा का ही पाठ पढ़ते हैं, लेकिन उसको समझना सुनना एक बात है, लेकिन सदा ही हम आत्मा समझकर निराकारी स्थिति में रहकर अपना कार्य व्यवहार करें, ये दूसरी बात है। तो ये देखा जाता है कि हम जब योग में बैठते हैं, क्लास में आते हैं, तो थोड़ा अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न हूँ, चेतन शक्ति हूँ। शाम के समय योग करेंगे तो हो सकता है थोड़ा समय वो भी अभ्यास करें, लेकिन सारा दिन हम कर्म कॉन्शियस होते हैं या तो, या बॉडी कॉन्शियस होते हैं। पूरा दिन हमारी आत्मिक स्थिति नहीं रहती और इसीलिए अनेक प्रकार के प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा के जीवन में हम देखते हैं कि बाबा ने जैसे ही ये ज्ञान लिया, बाबा को जैसे ही शिव बाबा ने ये स्मृति दिलाई, उस घड़ी से बाबा ने इस पाठ को पक्का किया। शुरू में क्योंकि देह अभिमान के तो 63 जन्मों के संस्कार है ना, बहुत गहरे संस्कार है, इतना आसानी से देह अभिमान छूटता नहीं है, तो बाबा ने देखा कि इसमें मेहनत है, तो बाबा ने उस समय एक एक का नाम, जो भी परिवार में थे उसके नाम से उनको आत्मा समझने का अभ्यास किया, अपने लिए भी डायरी में लिख लिख करके, हजारों बार लिख लिख करके वो अभ्यास किया, जब तक कि वो दृष्टि वृत्ति पक्की नहीं हो गई। तो अगर हमें भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हमें लगता है कि हम समझने की कोशिश तो करते हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन भूल जाते हैं, वो कब बिंदी खिसक जाती है पता ही नहीं चलता। तो इसका मतलब हमें फुल अटेंशन देने की जरूरत है, और जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तभी हमारी रूहानियत दिखाई देती है, तभी हम न्यारे दिखाई देते हैं, जिसको बाबा कहता है कि आप अपने चेहरे से स्वरूप से सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि वृत्ति औरों से भिन्न नजर आती है, अलौकिकता उसमें नजर आने लगती है जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से ही देखते हैं। तो ये हमें चेक करना है कि उतनी रूहानियत अलौकिकता क्या हमारी बनी है, और अगर नहीं बनी है तो अभी हमें उस पर थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं तो बाबा कहते हैं केवल ये नहीं समझना है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन ये समझना है कि मैं कौन सी आत्मा हूं। बाबा ने हमें पुरानी स्मृतियां याद दिलाई हैं, कल्प पहले वाली स्मृतियां, कि मैं आत्मा कौन थी, मेरा सत्य स्वरूप क्या था। तो हम ही वो देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, हम ही वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पवित्र बनने वाली आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, या हीरे तुल्य जीवन बनाने वाली आत्माएं हैं, या भगवान की चुनी हुई विशेष आत्माएं हैं। तो इस स्वमान की स्मृति में रहते हैं तो वो नशा और खुशी अनुभव होता है, और फिर जैसी स्मृति होती है वैसी ही हमारी स्थिति बनती है। स्थिति का पूरा संबंध हमारी स्मृति के साथ होता है, तो हम स्वयं भी उसे महसूस करते हैं और हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं भी उसे महसूस करती हैं। और जब आत्मिक स्थिति होती है तो वो जैसे हमारे कर्म भोग के लिए भी बाबा कहता है एक इंजेक्शन का काम करती है। आत्मिक स्थिति माना हम डिटैच हैं, शरीर से डिटैच हैं, और शरीर से डिटैच हैं तो सिस्टम हमारे सब रिलैक्स होते हैं और हमें दर्द की फीलिंग बहुत कम होती है। मानो कहीं कोई शारीरिक कष्ट है, रोग है, तो उसके कारण अगर कोई दर्द हो रहा है तो बहुत कम हो जाता है। जिसको बाबा कहता है कि कर्म भोग अगर सूली के समान है तो वो कांटे के समान अनुभव होगा। कांटा कितना कम महसूस होता है। और आत्मिक स्थिति में हम बाबा की शक्तियों को स्वयं में अनुभव करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन होता है बाबा से, और उस रूहानी शक्ति के आधार पर जो बाबा की हमें दुआएं मिलती हैं, बाबा कहते हैं दुआ और दवा से बीमारी सहज चली जाती है। तो बाबा की वो दुआएं, वो शक्तियां, और स्वयं की वो आत्मिक स्थिति जिसका शरीर पर प्रभाव होता है, कुल मिलाकर के हम सहज ही अपने कर्म भोग को कर्म योग में बदल लेते हैं। तो ये भी हम अनुभव करके देख सकते हैं, एक योग का प्रयोग करके देख सकते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो हम स्वयं को उस निराकारी स्थिति में ले जाएं, और निराकारी स्थिति में ही हम ज्वालामुखी याद का अनुभव कर सकते हैं, जिसकी बाबा हमें बार बार प्रेरणा देते हैं कि हमारा योग साधारण रू रिहान वाला योग नहीं होना चाहिए, लेकिन पावरफुल लगन में मगन स्थिति या योग अग्नि वाला योग होना चाहिए। और वो तभी संभव है जब हम पूरे दिन उस स्थिति का अभ्यास करते हैं, और फिर जब हम योग में बैठते हैं तो सहज हमारा योग लगता है, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी बाबा की फ्रिक्वेंसी समान होती है, क्योंकि बाबा निराकारी है। और अगर सारा दिन हम बॉडी कॉन्शियस हैं और फिर शाम को योग लगाने बैठे, या जब भी योग करने की कोशिश करते हैं, तो व्यर्थ संकल्प, दिन भर की जो परिस्थितियां, बातें, मिलन हुआ, उन सब बातों के संकल्प मन में चलते रहते हैं, बाबा से योग नहीं लगता है, बाबा की शक्तियां नहीं मिलती, और ही सिर भारी हो जाता है, क्योंकि व्यर्थ नेगेटिव चिंतन में जाएंगे तो ऐसी बातें क्या करेंगी, सिर को हल्का करेंगी, भारी करेंगी। फिर सोचते हैं आधा घंटा योग में बैठे लेकिन कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, और ही माथा दुखने लग गया है। तो कारण, हमने बाबा से योग नहीं लगाया, लोग योग लगा ही नहीं हमारा। और अगर हम आत्मिक स्थिति में हैं तो तुरंत वो करंट हमें अनुभव होती है, जैसे हम योग के लेसन में बताते हैं कि सूरज की किरणें अगर किसी कागज पर पड़ती हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कागज पड़ा रहेगा, लेकिन वही किरणों को अगर फोकस कर दिया जाए, एक बिंदु पर अगर वो आती हैं, तो मिनट में वो कागज जल जाता है, फोकस हो गई, वो पूरी एनर्जी फोकस हो गई, तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि वो मिनट में उस कागज को भस्म कर सकती है। तो बाबा भी कहता है कि ज्वालामुखी योग माना आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश करने वाला योग, जब बाबा की पूरी शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ती हैं, तब आत्मा उस पवित्रता का अनुभव करती है, उस हल्केपन का, डबल लाइट स्थिति का अनुभव करती है। और सबसे अच्छा समय है अमृत वेले का समय। अमृत वेले हम निराकारी स्थिति सहज बना सकते हैं, क्योंकि उस समय प्रकृति का हमें सहयोग होता है, बाबा से हमारी लाइन बहुत जल्दी, जैसे कहते हैं लाइन क्लियर होती है। सतो प्रधान समय है, किन्हीं भी आत्माओं के वाइब्रेशंस हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं उस समय। और जिस स्थिति का जितना समय हम अमृत वेले अनुभव करना चाहें उतना समय हम कर सकते हैं। और वरदानी समय है, अगर हमने संकल्प किया है तो बाबा की भी मदद हमें मिलती है। तो यदि हमारी स्थिति नहीं बन रही है तो बाबा हमें मदद करता है। बाबा कहता है हिम्मते बच्चे मदे दे बाप। और वो अमृत वेले का अनुभव सारा दिन हमें सहयोग देगा। ब्रह्मा बाबा के पास जब भाई बहने जाते थे, खासकर हमारी दादियां बड़े भाई सुनाते हैं कि बाबा का अभ्यास इतना था शरीरी स्थिति का कि पहली बार जब वो बाबा से मिलते थे, बाबा की दृष्टि मिलती थी उनको, तो अशरीरी हो जाते थे। बहुत सारी बातें मन में सोचकर आते थे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये पूछेंगे, लेकिन बाबा की दृष्टि में वो पावर थी कि वो सब कुछ भुला देती थी और सीधा उस अशरीरी स्थिति के अनुभव में वो आत्मा चली जाती थी। तो हम भी वो अनुभव करा सकते हैं, लेकिन पहले हमारे स्वयं की स्थिति ऐसी हो, तभी बाबा कहता है कि साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए बहुत जरूरी है कि हम बहुत काल का निराकारी अशरीरी स्थिति का अभ्यास करें। तो वो डबल लाइट स्थिति में, जैसे हम कहते हैं ना कि ये स्विच ऑन ऑफ हम करते हैं, ऑन किया लाइट हो गई, ऑफ किया अंधेरा हो गया, तो सिर्फ स्मृति इतनी पावरफुल हो, परिवर्तन इतना फास्ट हो कि जैसे कि स्मृति का स्विच ऑन किया और हम उस स्वरूप में स्थित हुए। चाहे कितना ही व्यस्त हैं, प्रवृत्ति में व्यस्त हैं या कोई भी और कारोबार में व्यस्त हैं, लेकिन स्मृति आई और वो स्थिति बनी। वो तब संभव होता है जब लंबे समय का वो अभ्यास होता है हमारा, नहीं तो हम सोचते रहेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन स्थिति नहीं बनती, आत्मा का ही अनुभव नहीं होता। बहुत भाई बहने शिकायत करते हैं, आत्मा का पाठ तो पढ़ा है लेकिन अभी तक आत्मा का अनुभव ही नहीं है। और फिर जब हम निर्विकारी स्थिति की बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि पांच विकार, बाबा जी ने माया रावण कहता है, इन पांच विकारों पर हमें विजय पानी है, माया जीत बनना है और उससे भी आगे फिर प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि प्रकृति के पांच तत्व भी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं, इन विकारों के मोटे रूप को जीतना हमारे लिए आसान होता है, हमें समझ में आ जाता है, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज लाइट हम कहते हैं, तो उस ज्ञान से वो बातें हमें समझ में आती हैं और हम उन्हें छोड़ना ही चाहते थे, हमें वो मार्ग स्पष्ट हो जाता है, तो हम उसके मोटे रूप को त्याग देते हैं। काम विकार पर विजय होती है, लेकिन सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म रॉयल रूप है, कई बार समझ में ही नहीं आता, उसकी परखने की शक्ति भी हमारे अंदर नहीं होती है, तो माया का सूक्ष्म रूप अपना दांव ले लेता है, बाबा कहता है। तो काम विकार का मोटा रूप ब्रह्मचर्य का पालन करना, वो फाउंडेशन है हमारे ब्राह्मण जीवन का, हम सब पवित्र रहते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप में बाबा कहता है, अगर मेरी आत्मिक दृष्टि नहीं है, देह अभिमान की दृष्टि हो जाती है, दृष्टि वृत्ति फिर चंचल होती है, किसी की देह से हम प्रभावित होते हैं, तो इसका मतलब वो सूक्ष्म रूप अभी भी है मेरे अंदर। और उसके आगे बाबा कहता है कि यदि हम किसी के गुणों से भी प्रभावित होते हैं, चलो देह से प्रभावित होते हैं, वो देह अभिमान, देह से प्रभावित नहीं हो रहे हैं लेकिन उनके गुण अच्छे हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनका व्यक्तित्व है, वो हमें बहुत स्नेह देते हैं, बहुत सहयोग देते हैं, तो वो भी हमें खींचता है। तो बाबा इसको भी कहता है कि ये रॉयल रूप का काम का अंश है, अगर स्नेह है तो सबसे स्नेह है, किसी विशेष आत्मा के प्रति यदि मेरा स्नेह ज्यादा है, मेरा झुकाव है, लगाव है, तो वो भी काम विकार का अंश है और वो कभी भी वंश बन सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है। तो इतनी सूक्ष्म चेकिंग हमारी अपनी चाहिए। और वो चेकिंग है, जब आप योग में बैठेंगे तो लगाव वाली आत्मा आपको ज्यादा खींचेगी बाबा की बजाय। बाबा से योग नहीं लगेगा, लेकिन उस आत्मा का चेहरा आपके मन पर आता रहेगा। तो वहां फिर हमें चेंज करना है, अपने उस लगाव को परिवर्तन करना है। बाबा ही मेरा संसार है, एक बाप दूसरा ना कोई, ये संपूर्ण पवित्रता की स्थिति है। ये बाबा ने समझाया है कि बाबा के सिवाय बाकी सब आत्माओं से सिर्फ हमें सेवा के संबंध है। अगर किसी के अंदर कोई विशेषता भी है तो वो बाबा की दी हुई विशेषता है, उससे प्रभावित नहीं होना है। लेकिन जिसने दी है वो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो हमें भी दे सकता है, तो उस गुण को हम धारण करें भले, लेकिन प्रभावित नहीं हो जाएं। फिर ऐसे ही क्रोध के लिए बाबा कहता है, क्रोध को जीतना शायद काम विकार से भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि रोज हमारे जीवन में ऐसी कोई ना कोई परिस्थितियां, बातें पैदा होती रहती हैं, जो कहीं ना कहीं हमें गुस्से में ले आती हैं। तो हम उस तरह से दुनिया वालों जैसे चिल्लाकर तो गुस्सा नहीं करते हैं, उतना तो परिवर्तन कर लेते हैं। और यदि हम परिवर्तन करते हैं तो सचमुच वो सेवा होती है, लोग भी इस बात को नोट करते हैं। और अगर हमने परिवर्तन नहीं किया तो डिसर्विस भी होती है। बाबा कहते हैं क्रोध विकार है ना, प्रत्यक्ष हो जाता है, और प्रत्यक्ष होता है इसीलिए बाबा की निंदा कराता है। और कहते हैं सद्गुरु का निंदक छोड़ ना पाए। यदि बाबा की निंदा कराई, किसी ने आपको कह दिया आप रोज आश्रम पर जाते हो और फिर भी ऐसा बोलते हो, ऐसे गुस्सा करते हो, घर में जाते हैं क्लास करके गए सेंटर से, घर में कोई बात हुई भूल गए और वैसे ही गुस्सा कर दिया जैसे पहले करते थे, तो आपके बच्चे ही आपको कह देंगे मम्मी अभी अभी आप मूल्य सुन के आए हो। तो ठहर ना पाए मतलब बाबा कहते हैं ऊंच पद की प्राप्ति से आपको माया वंचित कर देगी। एक बहन थी यहां आई थी मधुबन में, तो उसने हमको अपना अनुभव सुनाया कि ज्ञान में आने के पहले उनके घर की हालत क्या थी। उनके पति शराब पीते थे और जब शराब के नशे में घर आते थे तो कोई ना कोई बात को लेकर जो शराब पीने वाले होते हैं उनका अपने ऊपर कंट्रोल बहुत कम होता है, बहुत जल्दी वो झगड़े के रूप में बदल जाता है। तो उनके घर में ऐसे होता था कि रोज झगड़ा होता था, तो वो बहन बहुत अशांत रहती थी, दुखी रहती थी और अपने भाग्य को कोसती थी कि भगवान ने मुझे क्या भाग्य दिया है, ऐसा पति मिला है, जरा भी जीवन में शांति नहीं है। तो ऐसे ही उसको ज्ञान के लिए उनके गांव में एक गीता पाठशाला खुली और उसकी पहचानने वाली उसकी जो बहन थी उसने उसको निमंत्रण दिया। तो उसने कोर्स किया और उसको सारा ज्ञान समझ में आया और फिर उसने ये भी समझा कि मुझे पति के साथ कैसा व्यवहार करना है। रोज मूली सुनती थी वो, उसके अंदर वो बातें उसको लगती थी, उसने धारण करना शुरू किया। तो अब वो पहले जैसा गुस्सा नहीं करती थी, पति झगड़ा भी करता था तो भी वो शांत रहती थी। और जैसे सीखा कि मुझे इसको फिर भी शुभ भावना शुभ कामना देनी है, जितनी मैं सेवा कर सकती हूँ करनी है, किसी भी आत्मा के प्रति मुझे ऐसा भाव नहीं रखना है। तो पति ने नोट करना शुरू किया कि ये जब से आश्रम में जाने लगी है तब से इसमें परिवर्तन आया है। तो प्रभाव था, लेकिन थोड़ा अहम होता है ना तो वो बोलता नहीं था, लेकिन समझता था अंदर में कि हमारे घर में परिवर्तन हुआ है। फिर एक फंक्शन था सेंटर पर और उसको जैसे अवसर मिल गया, उसने अपने पति को कहा कि चलो आप भी देखो। तो अंदर में उसको मन में तो था आगे से नहीं बोलता था, मन में था। तो जैसे ही उसको निमंत्रण मिला उसने हाँ किया कि ठीक है मैं आऊंगा प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आया, उसने सुना और उसको भी वो सब बातें अच्छी लगी। खुद भी तो अपने जीवन से दुखी था, शराब का नशा होता है, छूटता नहीं है, मजबूर होता है इंसान, तो सोचता तो था लेकिन कर नहीं पाता था। और जब उसने ये सब सुना, बहन ने उसको कहा आप भी 7 दिन का कोर्स करो, उसने माना, कोर्स किया और 1 महीने के अंदर अंदर उसकी वो शराब छूट गई। तो ये जो माता ने अपने व्यवहार का परिवर्तन किया, इससे उसकी भी सेवा हुई और उस आत्मा को भी इतनी बुरी आदत से छुटकारा मिला, उसका पूरा जीवन बदलने के वो निमित्त बन गई। तो हमारे जीवन का परिवर्तन अनेकों को प्रेरणा देता है अगर हम कर लेते हैं, और नहीं करते, सिर्फ नेमीनाथ बन करके अपना नियम निभाते हैं, बाकी मुरली वहीं छोड़ आते हैं, सेंटर पर जाते हैं, सुनते हैं लेकिन वहीं छोड़ आते हैं उसको, तो फिर कहीं कहीं हमसे डिससर्विस भी होती है। तो चाहे जो भी कारण बने, बहुत कारण बनते हैं गुस्से के जीवन में, और क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं, है ही कले कलेश का युग, और बाबा ने हमें समझा दिया है कि हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। तो मानो कोई मेरी बात नहीं मान रहा है या बार बार गलती कर रहा है। गुस्सा आने का कारण क्या होता है? आपने बच्चों को समझा दिया फिर भी वही कर रहे हैं, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? हाँ, माताएं क्या बोलेंगे, आएगा। तो फिर गुस्सा कर देना चाहिए, है ना? सही कारण है ना, उसने गलती की तो गुस्सा करना तो मेरा हक बनता है, बनता है, बाबा की श्रीमत है, कर देना चाहिए। तो बाबा ने हमें क्या समझाया है, भले नहीं मान रहा है, गलती कर रहा है, फिर भी हमें प्यार से ही समझाना है। आप गुस्सा करेंगे चलो ठीक है, आपके डर से वो उस समय दब जाएंगे थोड़े समय के लिए, फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे और आपसे सीख भी जाएंगे। 2-4 बार चुप रहेंगे, 5वीं बार बोलना भी शुरू कर देंगे, जितना आप बोलेंगे उतना वो भी बोलेंगे। सिखाया किसने, गुस्सा करना किसने सिखाया? और आप गुस्से में आकर के कुछ भी बोलते हो, माना अच्छे अच्छे शब्द बोल देते ना गुस्से में, बच्चे भी वो सीख जाएंगे, फिर दूसरों को बोलेंगे, फिर आपको लगेगा ये क्या करते हैं। तो हमें उनको क्या सिखाना है, वही व्यवहार हमें उनसे करना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती कर रहे हैं। प्यार से समझाओ उनको, नहीं मानते हैं फिर प्यार से समझाओ। हो सकता है आपको शायद बहुत धीरज रखना पड़ेगा, हाँ इतना धीरज हमारे अंदर होता नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को और बोल देते हैं। फिर मानो आपकी कोई निंदा करता है, चुगली लगाता है, ऐसे भी हो सकता है, वो भी तो हमको पसंद नहीं आता, बहुत गुस्सा आता है हमें उसके ऊपर, लेकिन बाबा ने हमें समझाया है अगर कोई मेरी कमी निकाल रहा है तो अगर वो मेरे अंदर है, हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना संपन्न बनने का, तो क्यों नहीं उसको रियलाइज करके चेंज कर लें। और अगर लगता है नहीं है, फिर भी कोई गलत मेरी बातचीत कर रहा है इधर उधर, तो इसका मतलब मेरा कोई हिसाब किताब है उस आत्मा के साथ, कोई पूर्व जन्म का मेरा हिसाब किताब है और वो अब उसको चुप्पू कर रही है, तो समझो मेरा कोई पुराना खाता खत्म हुआ। तो और ही आत्मा कर्म भोग से हल्की हो गई ना, तो उसको हम पॉजिटिव लें, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदलने की शक्ति हमारे अंदर चाहिए। और भी बाबा कहता है, मानो अगर कोई गुस्सा कर रहा है किसी भी कारण से कर रहा है, मानो और किसी ने झूठ बोला, धोखा दिया, लेकिन मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्यार के सागर की संतान हूं, मैं विश्व परिवर्तक हूं, तो मुझे परिवर्तन करना है या मुझे उसके प्रभाव में आना है? उसने गुस्सा किया तो मुझे भी करना है, उसने ऐसा किया तो मुझे भी करना है, तो वो भी फेल और मैं भी फेल, ऐसा ही हुआ ना। कि मुझे पास होना है। कैसा भी पेपर मेरे सामने आए, अगर वो आत्मा परवश है, वो अपने तमो प्रधान संस्कारों के वश है, तो मुझे अपने सत्व प्रधान संस्कारों को इमर्श करके उसके प्रति रहम का भाव रखना है, उसके प्रति फिर भी शुभ भावना रखनी है, ताकि उसका फिर परिवर्तन हो। उस समय सिर्फ शांत रह जाना है, कहना कुछ नहीं है, कहकर नहीं बताना है उनको कि आप अभी परवश हो, नहीं तो उसका परिणाम उल्टा होगा। लेकिन शांति से उस आत्मा को मैं शांति के वाइब्रेशन, हम शांति की देवी बन जाएं। फिर क्रोध का सूक्ष्म रूप भी आता है, किसी के प्रति घृणा का भाव है, रौब आता है हमें, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये गुस्से के सूक्ष्म रूप हैं। नफरत आती है जब हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, उसकी कमी देखते हैं, हमें लगता है ये जो काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए। यानी जैसा हम चाहते हैं वैसा अगर वो नहीं बनते हैं, वैसा हमें वो नहीं दे रहे हैं, तो वो सूक्ष्म रूप से वो नफरत हमें उनके प्रति होने लगती है। लेकिन मुझे पहले परिवर्तन करना है, और हमें ये देखना है कि अगर उसमें कुछ कमी है तो हमारे में भी तो कुछ कमी होती है, हम थोड़ी संपूर्ण हैं, हम सभी पुरुषार्थी हैं, उसके अंदर अगर वो कमी है तो कुछ दूसरे गुण होंगे। कई बार बाबा कहता है 35 गुण 36 गुण उस आत्मा में होंगे, वो नहीं दिखाई देंगे हमें, वो एक कमी होगी, वो मुझे बार बार परेशान कर रही है, वो मेरा ध्यान बार बार खींच रही है और मेरी स्थिति को नीचे ला रही है। अगर हम दूसरों का अवगुण देखते हैं तो वो अवगुण हम धीरे धीरे अपने में भी धारण कर लेते हैं, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति, बार बार अगर उसके अवगुण को मैं स्मृति में ला रही हूं तो मेरी स्थिति वैसी बनने लग जाएगी। और ऐसे ही लोभ, अगर हम ऐसे देखें, हम बाबा के बच्चे, हम लोभ पर विजय पा लेते हैं, यानी जैसे दुनिया धन कमाने के पीछे है, सारा दिन भाग दौड़ की जिंदगी है, क्योंकि धन को बहुत महत्व देते हैं, धन ही सब कुछ है आज के जमाने में, ऐसा मानते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये विनाशी कमाई हमारे साथ नहीं जाने वाली है, हमारे साथ अविनाशी कमाई जाने वाली है, तो हम पूरा समय धन के पीछे दे दें, ये हम परिवर्तन करते हैं, और हम अपना समय बाबा की पढ़ाई में, सेवा में, अपनी इस कमाई में लगाने लगते हैं, तो वो लोग तो नहीं रहता है बाबा के बच्चों में। लेकिन और बाबा कहता भी है, हाँ अगर हम लखपति करोड़पति होंगे तो यहां नहीं बैठे होंगे, बाबा गरीब निवास है, तो गरीब बच्चे ही बाबा के बनते हैं। लेकिन सूक्ष्म अंश क्या होता है, हमारी आवश्यकताएं, वो तो पूरी होनी चाहिए, तो फिर आवश्यकताओं की भी हद होती है, जब तक वो हद में है तब तक वो लोभ का अंश नहीं है। आवश्यकताएं अगर बेहद में चली जाती हैं, तो फिर बाबा कहता है वो लोभ का अंश हो जाता है। अब मानो जैसे खाने पीने का लोभ हो सकता है, पहनने ओढ़ने का लोभ हो सकता है, तो किसी किसी को लगता है खाने में ऐसा होगा ना तो ही ठीक है, तो ही खाना अच्छा लगता है, ये तो होना ही चाहिए, स्वादिष्ट भोजन बना है तो ज्यादा खाएंगे हम, मन पसंद भोजन नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा, या जूता है, दो जोड़ी जूते की आवश्यकता है लेकिन 10 जोड़ी जूते हैं तो आवश्यकता से ज्यादा हो गया ना, हमको 10 जोड़ी कपड़े चाहिए लेकिन 50 जोड़ी कपड़े हमने रखे हैं और इकट्ठे करते जाते हैं। तो ये अंश है उसका, है ना। उस तरह से नहीं कि हम बहुत समय उसमें लगाते हैं, लेकिन शौक। तो ये वस्तुएं भी कई बार बाबा कहता है अंत समय में हमारा पेपर ले सकती हैं, प्रकृति की चीजें हैं ना। अगर बाबा कहता है 36 प्रकार का भोजन मिल रहा है तो भी बहुत अच्छा, और अगर सूखी रोटी और गुड़ मिल रहा है तो भी बहुत अच्छा, दोनों में ही हम संतुष्ट हैं। लोभ को हम संतुष्टता से जीतते हैं। अगर बहुत अच्छा कपड़ा है तो भी अच्छा, और अगर चत्तियों वाला कपड़ा है, कोई ऐसी स्थिति है जब हमको ऐसा भी कपड़ा पहनना, जैसे बेगरी पार्ट था किसी समय यज्ञ में, तो बाबा ने सब अनुभव कराए। शुरू शुरू में सबको शहजादे शहजादियों की तरह पाला, बिल्कुल अनुभव कराया जैसे प्रिंस प्रिंसेस हैं। लेकिन एक समय जब यज्ञ में ऐसा आया कि बाबा ने सिर्फ छाछ और डोडा वही खिलाया, 15 दिन तक एक ही प्रकार का भोजन, दूसरा कुछ था ही नहीं। तो जिन्होंने दोनों स्थितियों में मौज अनुभव की वो सहज पास हो गए, उसमें उस पेपर में पास हो गए। तो हमें भी ऐसे तैयार रहना है, ऐसे नहीं कि वो खाने पीने की हमारी आदत अंत में हमें पास की बजाय फेल के लिस्ट में ले आए। ऐसे एक दादी कई बार उदाहरण सुनाती हैं, एक माता थी, उसको पापड़ खाने का बहुत शौक था, बीमार हुई अचानक और ऐसी हालत हुई लास्ट स्टेज, अब उसको पापड़ चाहिए, मना थी डॉक्टर की खाने की लेकिन पापड़ चाहिए, पापड़ में अटकी हुई थी। फिर उसको पापड़ जब दिया तब उसने शरीर छोड़ा, पापड़ खाया उसने फिर उसने शरीर छोड़ा। तो अंत मति सो गति हो सकती है। तो ऐसी कोई चीज, अपनी ऐसी सूक्ष्म चेकिंग हमें करनी है कि वो हमारी स्थिति को नीचे तो नहीं ले आती है। फिर मोह विकार, लोभ और मोह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोभ हमें होता है, हमें ज्यादा चाहिए, इच्छा इच्छा इच्छा, ना? लेकिन मोह जो हमारे पास पहले से है उसमें हमारा लगाव, मेरापन होता है। फिर चाहे वो संबंधी हैं, चाहे वो वस्तुएं साधन हैं, उसमें मेरापन आ जाता है और उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। और अगर वो चीज किसी भी तरह से मेरे से छूटती है तो मुझे दुख होता है। मोह की निशानी है दुख का अनुभव होना, अटैच्ड है ना, हम छोड़ना नहीं चाहते उसको। अगर वो व्यक्ति कहीं चला गया तो हमें दुख होगा, मानो उसकी मृत्यु ही हो गई। तो जितनी मात्रा में मेरा उनके साथ मेरापन है, अपनापन हम महसूस करते हैं, उतनी मात्रा में ही हमें दुख होगा। हम सड़क पर हम देखते हैं कितने दुर्घटनाएं होती हैं, या किसी दूसरे के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, हमें कुछ नहीं होता क्योंकि उसमें हमारा कोई मेरापन नहीं है। लेकिन अगर मेरे परिवार में किसी ने शरीर छोड़ा तो जितनी मात्रा में मेरा उनके साथ मोह है उतना ही हम दुख का अनुभव करेंगे। एक व्यक्ति बिजनेसमैन था, उसको पता चला दुकान में कि मेरे घर में आग लग गई है। उसने अभी अभी एक नया घर लिया था लेकिन उसमें शिफ्ट नहीं किया था, और ये पुराना घर जो था वो बेचने के प्रोसेस में था लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ था, और उसी घर में आग लगी। उसको पता चला, वो पहुंचा दुकान छोड़ करके अपने घर गया तो देखा कि घर वाले तो सब बाहर हैं और सामान भी काफी बाहर निकाल दिया है, लेकिन अभी वो फायर ब्रिगेड पहुंचे। और तो उतने में उसको उसके कारण बहुत दुख महसूस होने लगा, टेंशन होने लगा, परेशान होने लगा, घर जल रहा है। तो उसका पड़ोसी आया उसके पास और उसने कहा, भाई साहब आप चिंता मत करो। उसने कहा, चिंता कैसे नहीं करूं, मेरा घर जल रहा है। उसने कहा, बात ऐसी है कि आज सुबह ही आपके बड़े बेटे ने इसके सारे पेपर फाइनल कर दिए, जिसको मकान बेचना था उसको दे दिया है और उसने पेमेंट भी कर दी है उसकी, आपको शायद पता नहीं है। तो उसने कहा नहीं मैं तो सुबह से दुकान पर था मुझे मालूम नहीं। तो जैसे ही उसको पता चला कि अब ये मकान मेरा नहीं है, अब ये किसी का हो चुका है, वो खुश हो गया। अब मेरा मकान नहीं जल रहा है, किसका जल रहा है? दूसरे का जल रहा है। तो ये मेरा फन जो है, दादी जी आ चुके हैं तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति।